सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलयु बागिदे यार ज्ञान पाप कर्म गेद्दु ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ पंच परमेष्ठी भगवान अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की
परम पूज्य साठ नियम सागर जी महाराज की जय समस्त आचार्य संघ की जय।
जीवों का कथन पूर्ण हुआ। त्रस्कायिक जीवों के भेदों को हम समझेंगे। त्रस्कायिक जीव तीन लोक में ये कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न आने पर नक्शा सामने आना चाहिए और बताना भी आना चाहिए कहाँ रहते हैं। त्रस्नाली में रहते हैं। स्थावर कायिक जीव त्रस्नाली में भी रहते हैं और त्रस नाली के बाहर भी रहते हैं। त्रस जीव के मुख्य रूप से दो भेद करना चाहिए, विकलत्रय जीव और सकलत्रय जीव। ये त्रस कहलाते हैं। त्रस इसलिए कहलाते हैं कि ये अपने दुखों से बचने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर गमन कर सकते हैं। जैसे मूंगी है, आप थोड़ा सा भी हाथ लगा लेते हैं तो मूंगी भागने लगती है, इसलिए उसको त्रस कहा है। किंतु जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वनस्पति का एक जीव, पृथ्वी का एक जीव भाग करके खड़े होते हैं। कोई व्यक्ति जमीन खोदने लगा और खोदने पर पृथ्वी का एक जीवों को दुख तो होता ही है, असंख्यात पृथ्वी का एक जीव खोदते समय दुखी बनते हैं, किंतु वे भाग करके खड़े नहीं हो सकते, अपने दुख से बच नहीं सकते, इसलिए उनको स्थावर कहा है। तिष्ठति इति स्थावर, त्रस्यते स्थानात् गमनम् कुर्वन्ति ए जीवाहा ते त्रसाहा, ते त्रसाहा, वे त्रस कहलाते हैं जो अपने दुख से बचने के लिए स्थानांतरित हो सकते हैं। ये त्रस कायिक जीव हैं। इनके दो भेद हैं, विकलत्रय और सकलत्रय। विकलत्रय में तीन भेद करना चाहिए, द्विन्द्रिय जीव, त्रिन्द्रिय जीव और चतुरेन्द्रिय जीव। विकल अर्थात जिसको इंद्रियां कम हो उसको विकल कहते हैं। विकल का क्या मीनिंग है? जिसको इंद्रियां कम हो, सभी इंद्रियां ना हो तो विकलत्रय। त्रस में है किंतु इंद्रियां कम हैं, ऐसे जीवों को विकलत्रय कहते हैं। सकलत्रय माने सकल इंद्रियां जिसको हो, सभी इंद्रियां जिसको हो, वे सकलत्रय जीव कहलाते हैं। तो विकलत्रय में तीन भेद हो गए, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री। जिसको स्पर्शन और रसन दो इंद्रियां हो वे द्विइंद्री, जिसको स्पर्शन रसन घ्राण तीन इंद्रियां हो वो तीन इंद्री, और जिसको स्पर्शन रसन घ्राण और चक्षु ये क्रमशः चार इंद्रिय हो वो चौरिंद्रिय जीव। इस प्रकार ये विकलत्रय जीवों की इंद्रियों के कारण इनको विकलत्रय कहा, कम इंद्रियां होने से विकलत्रय कहा। अब सकलत्रय जीव के क्या लिखा है, नीचे नीचे क्या लिखा है, कर्म केवल कर्म भूमि में रहने वाले जीव, केवल कर्म भूमि में रहने वाले जीव, समझ में गए ना, ये कहाँ रहते हैं, हाँ ये ध्यान में रखना है, भोग भूमि में नहीं रहते, स्वर्ग में भी नहीं रहते और नरक में भी नहीं रहते, स्वर्ग में नहीं, नरक में नहीं, भोग भूमि में नहीं, विधेय क्षेत्रों में, विधेय क्षेत्रों में है क्योंकि वो कर्म भूमि है, कर्म भूमि हो, आर्यखंड हो, वहां पर अवश्य रहेंगे। कहां कहां नहीं रहते देखना, म्लेच्छ खंड में नहीं रहते, हाँ म्लेच्छ खंड में त्रस जीव नहीं रहते, पांच म्लेच्छ खंडों में त्रस जीव नहीं पाए जाते, विकलेंद्री ही त्रस जीव है ना, विकलेंद्री, पंचेंद्री पाए जाते, और पंचेंद्री जीवों के मलमूत्र में जो समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं वे भी नहीं पाए जाते, कहां पर, म्लेच्छ खंड में, कर्म भूमि होकर के भी नहीं है वहां। तो एक्सेप्शन बात ध्यान में रखना है कि एक म्लेच्छ खंड है और एक भोग भूमि है, भोग भूमि में ये सब आएगा आगे जा करके अंतिम चार्ट में देखो। उसको दिखाएंगे पेज नंबर 56 क्या, 56 पेज नंबर, समूर्छन जीव जो त्रस संबंधी समूर्छन जीव हैं वे कर्म भूमि में पाए जाते हैं, कर्म भूमि में भी सब जगह नहीं किंतु जहां पर, सुन रहे ना, किंतु जहां पर जीवों को मोक्ष मिलता है, जहां पर जीव इन जीवों की हिंसा को त्याग कर साधना करते हैं वहां संयम पाया जाता है, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग, स्थावर जीव की हिंसा का त्याग, इस प्रकार त्याग करने वाले प्राणी संयम का पालन करते हैं। तो प्राणी संयम को पालन करने वाले जीव, प्राणी संयम को पालन करने वाले जीव संयमी होते हैं, कहाँ होते हैं ये संयमी जीव, कर्म भूमि में रहते हैं, कर्म भूमि में रहने वाले संयमी जीव इन जीवों की रक्षा करते हैं, म्लेच्छ खंड में संयम नहीं है, वहां पर हमेशा एक ही गुण स्थान है, स्थानी वहीं पर वो रहेंगे तो गुण स्थान उनका चेंज नहीं होगा, प्रथम गुण स्थान में ही रहते हैं। कौन जीव? म्लेच्छखंड के भोगभूमि के जीवों को फिर भी चार गुण स्थान हैं, कुभोग भूमि में और सुभोग भूमियों में चार गुण स्थान पाए जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चार गुण स्थान हैं। किंतु म्लेच्छखंड में तो एक ही गुण स्थान है, जबकि ये कर्म भूमि कहलाती है। तो इस कर्म भूमि से म्लेच्छखंड श्रेष्ठ है, नहीं इस कर्म भूमि से, म्लेच्छखंड के कर्म भूमि से भोग भूमि श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन हो सकता है, वहां के लोगों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, किंतु वो स्थान छोड़ देंगे तो इधर आएंगे कर्म भूमि में, आर्यखंड में आएंगे तो उनको गुण स्थान चेंज हो सकता है, गुण स्थान चेंज हो सकता है। कुभोग भूमि में भी संयमी नहीं, असंयमी, सभी जीव असंयमी हैं। देखो यहाँ विशेष में पढ़ना है, 56 पेज नंबर, पेज नंबर 56 मिल गया, विशेष को पढ़ो। भोग भूमि में व कुभोग भूमि में असंगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्तक अपर्याप्तक व संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तक अपर्याप्तक तिर्यंच व संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन मनुष्य नहीं होते व कोई भी जलचर तिर्यंच तथा विकलत्रय नहीं होते। म्लेच्छ खंड खंडों में संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तक अपर्याप्तक तिर्यंच वे सम्मूर्छन अपर्याप्तक मनुष्य विकलत्रय आ गए, देखो विकलत्रय पर्याप्तक अपर्याप्तक तिर्यंच जीव नहीं होते। किंतु संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्तक तिर्यंच जीव व संगी असंगी गर्भज पर्याप्तक जलचर थलचर नवचर तिर्यंच जीव होते हैं। म्लेच्छखंड में जलचर जीव तो होते हैं, जलचर जीव, किंतु वो भी संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्तक होते, संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्तक तिर्यंच जीव व संगी असंगी गर्भज पर्याप्तक जलचर थलचर नवचर तिर्यंच जीव होते हैं, जबकि भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते। वहां पर दो ही भेद हैं, तीन में से एक जलचर नहीं है, थलचर और नवचर दो ही भेद हैं। अंतर इतना है कि 850 म्लेच्छ खंडों में से पांच भरत क्षेत्रों में, पांच भरत क्षेत्रों व पांच ऐरावत क्षेत्रों संबंधी 50 म्लेच्छ खंडों में तथा 10 विजयार्ध श्रेणियों में सदा एक दुष्मा सुषमा काल का परिवर्तन विद्यमान होने से वहां के मनुष्य मनुष्यनी तिर्यंच तिर्यंचनी तथा पेड़ पर्वत आदि के अवगाहना में अवसर्पिनी उत्सर्पिनी के अनुसार घटन बढ़न होता है। मतलब हाँ, अवगाहना कहाँ से लेकर, 500 धनुष से लेकर 700 धनुष ये अवसर्पिनी काल के काल में, और सात हाथ से लेकर 500 से सात हाथ और सात हाथ से लेकर 500 धनुष तक ये उत्सर्पिणी में बढ़ते हैं, इससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं होते। तो अन्य काल में कितने रहते हैं, जैसे उत्सर्पिणी काल व्यतीत हुआ तो 500 धनुष पर आकर के रुक गए, तो 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल तक, इधर के 9 और उधर के 9, 9 18 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल तक वे कितने धनुष के रहेंगे, 500 धनुष के रहेंगे। पुनः कर्म भूमि आने तक 500 धनुष के रहेंगे। कहां के जीव, भोग भूमि के नहीं, हाँ 850 मिलेच्छ खंड के जीव और विजयार्ध श्रेणी के जीव, दो क्षेत्रों की बात चल रही है। विजयार्ध श्रेणी यानी विद्याधर, जो कि भरत क्षेत्र में ही आता है ना, यहाँ ये देखो ये विजयार्ध पर्वत है ये, और भरत क्षेत्र यहां से यहां तक है, यहां तक है, ये आर्यखंड है। म्लेच्छ खंड कहाँ कहाँ है, तो एक म्लेच्छ खंड ये है कोने में, एक म्लेच्छ खंड ये है, ये दोनों बाजू एक एक दो हो गए, और यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, ये 5 म्लेच्छ खंड हो गए, और आर्यखंड ये कहलाया आर्यखंड, ये आर्यखंड है। कर्म भूमि तो यहां से लेकर यहां तक कर्म भूमि है, ये सब कर्म भूमि है, म्लेच्छ खंड भी कर्म भूमि है। ये अर्धचंद्राकार यहां दिखाया, देखो ये सब कर्म भूमि है। कर्म भूमि होते हुए भी यहाँ विजयार्ध पर्वत जो आता है, ये विजयार्ध पर्वत जो दो लाइन खींची है, ये विजयार्ध पर्वत, वही यहाँ दिखाया है, ये विजयार्ध पर्वत यहाँ। और म्लेच्छ खंडों में 1, 2, 3 विजयार्ध श्रेणी, एक और एक म्लेच्छ खंड और इधर एक म्लेच्छ खंड, 5 म्लेच्छ खंड और एक विजयार्ध श्रेणी। यहाँ पर कौन सा काल चलता है, किस प्रकार का काल रहता है, तो कहते हैं यहाँ पर एक ही काल का परिवर्तन है, 6 काल का परिवर्तन नहीं है, 6 कालों का परिवर्तन यहाँ बीच में है केवल, यहाँ आर्यखंड में अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ 6 खंडों का परिवर्तन। आजकल जितना विश्व है, ये अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, भारत, ये विश्व में 6 कालों का परिवर्तन है। इसके बाहर जो म्लेच्छ खंड है, 5 म्लेच्छ खंड, इसके बाहर जो विजयार्ध है, इस विश्व के बाहर विजयार्ध, इन 6 क्षेत्रों में एक ही काल का परिवर्तन है। कौन सा काल, चतुर्थ काल जैसा काल का परिवर्तन। 500 धनुष से लेकर 7 हाथ तक इनकी ऊंचाई घटती आती है, और उत्सर्पिणी में तृतीय काल में पहला वाला काल व्यतीत हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, तीसरे नंबर में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो यहां पर 7 हाथ के तो रहते ही हैं, 7 हाथ के यहां पर 7 हाथ के रुक गया करके, तो शेष काल यहां पर व्यतीत होते हैं, वो यहां ये व्यतीत होते हैं, इनका प्रभाव वहां नहीं है। जैसे यहां पंचम काल आया, वहां पंचम काल नहीं चल रहा है, कहां कहां किसी भी म्लेच्छ खंड में अभी पंचम काल नहीं चल रहा है, छठा काल भी आने वाला नहीं है, और आगामी उत्सर्पिणी का पहला काल भी नहीं आने वाला है, और दूसरा काल भी नहीं आने वाला है, तीसरा काल शुरू होगा। तो ऐसा क्यों है, प्रकृति नियम है, क्यों है तो इसका कोई उत्तर नहीं, प्रकृति नियम है, प्रकृति नियम। वहां पर एक ही काल का परिवर्तन कर्म भूमि होते हुए भी, और यहां पर आर्यखंड है, कर्म भूमि ये भी है, लेकिन यहां 6 कालों का परिणमन होता है। ये सब अधर्म कहां, म्लेच्छ खंड में अधर्म तो है, एक ही गुण स्थान है, कर्म भूमि है वो। आर्यखंड में ही यहां पर धर्म है, पांच मिले छो में धर्म नहीं है, अधर्म ही रहता है, एक ही गुण स्थान रहता है। किंतु चतुर्थ काल जैसा काल है वातावरण, मोक्ष नहीं, धर्म का माहौल कुछ नहीं। ऐसी कल्पना करो जैसे चतुर्थ काल में मोक्ष का अभाव करो तो मलेच्छखंड बन जाएगा। तो वैसे वहां कल्पना करो ना, काल तो चतुर्थ काल है, तृतीय काल है, चतुर्थ काल नहीं हो। तृतीय काल का मतलब अवसर्पिणिका नहीं, उत्सर्पिणिका, तृतीय काल ही वहां चतुर्थ काल के समान माहौल रहता है। तीर्थंकर कब जन्म लेते हैं? यहाँ की अपेक्षा से अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में, उत्सर्पिणी के तृतीय काल में, उत्सर्पिणी के तृतीय काल में यहाँ तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तो उस समय तक वहां सात हाथ के रहेंगे मलेच्छ खंडों में, पांच मलेच्छ खंडों में। ऐसा यदि नहीं होगा तो यहाँ जो चक्रवर्ती होते हैं आर्यखंड में, बारह चक्रवर्ती, ये बारह चक्रवर्ती मलेच्छ खंड में भी जाते हैं, और मलेच्छ खंड में जाने के बाद वहां की कन्याओं के साथ विवाह करके भी आते हैं। तो भरत चक्रवर्ती 500 धनुष के थे, उस समय में सात हाथ की कन्याएं होंगी तो कैसे ले आएंगे उनको, हाइट तो बराबर चाहिए ना। तो ये है कि वहां पर चतुर्थ काल में जो बारह चक्रवर्ती रहते हैं उनका घटन बढ़न जैसा रहता है, बारह चक्रवर्तियों का भी क्रमशः घटता हुआ आता है अवसर्पिणी काल में, और उत्सर्पिणी काल में यहाँ बढ़ता हुआ जाता है बारह चक्रवर्तियों का, और चक्रवर्ती ही जाते हैं, चक्रवर्ती की सेना जाती है। तो वहां जाने के बाद दिग्विजय करके वो जो भेंट में देते हैं उन सबको ले आते हैं। तो चक्रवर्ती जिस काल का चक्रवर्ती यहाँ का रहेगा उतनी ही ऊंचाई वहां रहती है, कहाँ पर, पांच मलेच्छ खंडों में और विजयार्थ पर्वतों में। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। कहाँ आके रुक गए अपना, एक दो लाइन और रह गए। सोहनन छह सब होते हैं, कहाँ पर, पांच मलेच्छ खंडों में और विजयार्थ में सभी सोहनन होते हैं, परंतु 160 विदेह क्षेत्र संबंधी 800 मलेच्छ खंडों में इस प्रकार का घटन बढ़न रूप काल का परिवर्तन न होकर वहां के मनुष्य त्रियंच आदि की अवगाहना सदा स्थिर होती है। सहनन छह सहनन सब होते हैं, शेष विषय जीवों के अस्तित्व आदि का समान रूप से होता है। क्या कहा यहाँ, 800 मलेच्छ खंडों में, 800 कौन, 50, किस संबंधी, विदेह क्षेत्र संबंधी 800 मलेच्छ खंड, और भरत ऐरावत संबंधी 50 मलेच्छ खंड है। तो इन 50 को छोड़ो, क्योंकि इन 50 मलेच्छ खंडों में तो घटन बढ़न है, चतुर्थ काल जैसा वातावरण रहता है और मनुष्यों की ऊंचाई उसके अनुरूप ही होता है, धर्म मात्र नहीं रहता, इतना विशेष है, धर्म मात्र नहीं रहता। और ये ऊंचाई घटती है बढ़ती है ऐसा तो चलता है यहाँ, ये पांच भरत पांच ऐरावतों में समझना चाहिए। किंतु विदेह क्षेत्र में वहां पर भी चक्रवर्ती होते हैं, किंतु उनकी ऊंचाई सदा हमेशा, वहां काल परिवर्तन नहीं है, एक ही काल, चतुर्थ काल जैसा काल, एक ही काल, घटन बढ़न वाला नहीं, एक ही माहौल रहता है, एक ही ऊंचाई मिलती है वहां। कहां पर, विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र कितने हैं, 160 विदेह हैं, उसमें पांच भरत पांच ऐरावत मिलाने पर ये 170 हो जाते हैं, ढाई द्वीप में 170 कर्म भूमि है। इन 170 में से 10 निकाल लो, बाकी सब जो 160 विदेह क्षेत्र हैं, एक एक विदेह क्षेत्र संबंधी पांच पांच मलेच्छ खंड वहां भी हैं। जैसे यहाँ एक भरत संबंधी पांच मलेच्छ खंड हैं, वहां पर विदेह क्षेत्र में भी एक एक विदेह क्षेत्र संबंधी पांच पांच मलेच्छ खंड हैं, और एक एक विजयार्थ पर्वत भी है। सेम व्यवस्था, जैसा यहाँ है वैसा वहां है। तो विजयार्थ पर्वत कितने हो गए? विधि क्षेत्र संबंधी विजयार्थ पर्वत 160 हो गए, एक एक में एक एक, तो 160 हो गए। और म्लेच्छ खंड कितने हो गए? एक एक में पांच पांच, तो 160 को 5 से गुना करो 800 आ जाएगा। 800 म्लेच्छ खंड हैं। इन 800 म्लेच्छ खंडों में और 160 विजयार्थ पर्वतों में हमेशा 500 धनुष की अवगाहना वाले यानी ऊंचाई वाले मनुष्य रहते हैं, हमेशा उनमें घटन बढ़न नहीं है। ये विशेषता ध्यान में रखना चाहिए। यहां भरत ऐरावत में घटन बढ़न है और वह भी एक काल का घटन बढ़न है, पांच छह कालों का नहीं। और छह कालों का घटन बढ़न जो होता है वह केवल आर्यखंड में होता है। कितने प्रदेश में? अभी बताया, ये देखो ये जो कलर दिया है चॉकलेटी कलर, हल्दी कलर, इतने में ही होता है छह कालों का परिवर्तन, बाजू में नहीं होता। ये भी कर्म भूमि है, ये सब यहाँ पर नहीं होता। और कहाँ नहीं होता? ये विजयार्थ पर्वत जो बीच में आ रहा है, विजयार्थ पर्वत में भी छह काल का परिवर्तन नहीं है। ये समझ में आ गया? नहीं भी आता है तो वहां जाने के बाद आ जाएगा। वहाँ एक ना एक बार जाना है, सब विजयार्थ वगैरह घूम के आना है। यहाँ बैठे बैठे बहुत हो गया। तो अपन चार्ट में आते हैं। अब चार्ट में प्रथम चार्ट नक्शा में अमेरिका वहां है यहाँ है, ऐसा करने से समझ में नहीं आता। एक बार हो के आने से समझ में आ जाता है। विकलत्र तीन प्रकार के हो गए, इसमें भी तीन तीन, कितने? तीन क्या? दो, हाँ तीन तीन भेद करना चाहिए। विकलत्र में तीन तीन भेद कैसे? पर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। तीन इंद्रिय में भी वही तीन भेद, चतुरेन्द्रिय में भी वही तीन 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 भेद करना चाहिए। ये विकलत्र संबंधी कितने टोटल? नौ हो जाते हैं। विकलत्र जो होते हैं वे नियम से सम्मूर्छन कहलाते हैं। देखो ध्यान में रखना, जन्म के भेद नहीं बता पाए उसको सुनना। जन्म तीन प्रकार का होता है, केवल तीन प्रकार का जन्म होता है। समस्त तीन लोक में जितने जीव हैं तीन ही प्रकार के जन्म लेते हैं। एक उपपाद जन्म, उपपाद जन्म, दूसरा गर्भ जन्म और तीसरा है सम्मूर्छन जन्म। तीन ही प्रकार का, उपपाद जन्म, गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म, तीन ही प्रकार का। उपपाद जन्म यानी देव और नारकियों को वे जहाँ उनका योनि स्थान है, जन्म लेने का स्थान है, वहां पर कोई देव देव को जन्म नहीं देता। जहां पर स्थान है उस स्थान में जाकर जीव प्रवेश करता है। वहां प्रवेश करने के उपरांत अंतर मुहूर्त काल में उनका शरीर पूरा युवावस्था में आता है। एक साथ छोटा सा बड़ा नहीं होता, वहां एकदम युवावस्था में उठ के बैठ जाता है अंतर्मूर्त के बाद। इसको कहते हैं उपपाद जन्म। ये नारकियों को भी होता है और देवों को भी होता है। यहां से कोई जीव नरक में गया जन्म लेते समय, अंतर्मूर्त के भीतर वहां पर जन्म लेने के बाद बड़ा ही शरीर मिलेगा, छोटे से बड़ा नहीं होता, बड़ा ही मिलेगा और उतना ही रहेगा अंतिम समय तक। जन्म के काल में जितना बड़ा शरीर होता है उतना ही मरण काल तक रहता है। देवों का भी ऐसा ही समझना चाहिए। इसको कहते हैं उपपाद जन्म। उसके पुद्गल परमाणु उस उपपाद शैया में जाने के बाद ही मिलते हैं, इधर उधर उपपाद नहीं है तो वहां नहीं मिलते। समझ में आ गया? देव और नारकियों को कौन सा जन्म होता है? उपपाद जन्म। और सम्मूर्छन जन्म नहीं है, इसको लेते गर्भ जन्म, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो गर्भ जन्म है, गर्भ गर्भ जन्म वाले जीव हैं। जैसे त्रिरेंच और मनुष्यों को, त्रिरेंचों में पंचेंद्री त्रिरेंच, मनुष्यों में पंचेंद्री मनुष्य, चौरेंद्री मनुष्य तो होते नहीं, पंचेंद्री मनुष्य, सौधनी पंचेंद्री मनुष्य, ये गर्भ जन्म वाले भी हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी हैं। अपन कौन से जन्म वाले हैं? सम्मूर्छन है क्या? गर्भज, हम गर्भज हैं, इतना तो मालूम है ना। हम गर्भज हैं, हम सम्मूर्छन है। सम्मूर्छन मनुष्य कहाँ जन्म लेते हैं? मलमूत्र में। तो सम्मूर्छन जन्म का अर्थ होता है जहां पर जन्म लेने की योग्यता स्थान है, कहीं भी हो सकता है, मल और मूत्र में, कहीं भी किसी भी प्रदेश में, मल मूत्र में सब जगह योनि स्थान रहता है, वहां पर जाकर के आत्मा प्रवेश करती है, वहां के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर रचना करते रहती है, शरीर रचना होने से पहले ही मरण होता है। एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती छह में से, और उसका मरण होता है, श्वास के 18वें भाग में उसका मरण होता है। किंतु एक अंतर मुहूर्त में ये केवल 8 ही बार जन्म ले सकता है, मरण कर सकता है। मनुष्य के 8 भव बताए, कितनी बार जन्म ले सकते हैं? श्वास के 18वें भाग में इनका मरण होता है, परंतु ये मनुष्य सम्मूर्छन पर्याय कितनी बार मिलती है? तो अंतर मुहूर्त काल में 8 बार, 8 बार एक अंतर मुहूर्त काल में। तो ये एक चार्ट है, उसको निकालेंगे। इसको बतलाने के कौन सा जीव कितनी बार मरण करता है, सम्मूर्छन वाला, ये देखना है। पेज नंबर 24, हाँ 24-25, ये सभी सम्मूर्छन जीवों का कथन है। सम्मूर्छन जन्म कैसा होता है? वातावरण में रहने वाले पुद्गल परमाणुओं को ही ग्रहण कर शरीर बना लेना, जैसे चींटी आदि उत्पन्न होती हैं, मूंगी कैसे उत्पन्न होती है? ये चींटी चींटी को जन्म देती है क्या? नहीं, कहीं भी उनका वातावरण योनि स्थान बन गया तो वहां पर पुद्गल, वातावरण के पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर शरीर बना लेता है वो, और अंतर्मूर्त में बड़ा हो जाता है और घूमने लगता है। ऐसा जीव इनको सम्मूर्छन कहते हैं। ये शंख है, सीप है, चीटी है, बिच्छू है, ये सभी सम्मूर्छन कहलाते हैं। इनका जन्म ऐसा ही होता है वातावरण में। मेंढक है, ऊपर से मेंढक गिरते हैं तो ऊपर कोई जन्म देता है क्या? नहीं, वातावरण में ही पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर मेंढक बनकर के छोटे छोटे मेंढक नीचे गिरते हैं। नीचे भी उत्पन्न हो सकते हैं, आकाश में भी उत्पन्न हो सकती है। ये गोगल गाय वगैरह बरसात में कितने उत्पन्न होते हैं? ये समय उनकी योनि स्थान बहुत बड़ी होती है, बहुत सब जगह, क्योंकि वातावरण गर्म शीतोष्ण शीतोष्ण रहता है, तो उसमें योनि स्थान निर्मित होता है और वो जन्म लेते हैं। तो ये सम्मूर्छन जीव जो हैं दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। अपर्याप्तक यानी जो श्वास के 18 भाग में शरीर धारण करने से पहले ही मरते हैं, करते करते ही मरते हैं, और पर्याप्तक यानी पूर्ण शरीर पर्याप्ति पूर्ण करके जीवन जीकर जितनी आयु है उसका पूर्ण करके मरण करते हैं। तो अभी उन पर्याप्तक सम्मूर्छन त्रिरेंचियों की आयु को तो बताया था, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, मूंगी की कितनी आयु बताया था, कितने साल की भूल गए? उसी में है सब 49। तो वो पर्याप्तक जीव है, पर्याप्तक जीवों का चार्ट तो आपने देख लिया है। अब समूर्छन जो लब्धि अपर्याप्तक है, अपर्याप्तक जो शरीर पूर्ण होने से पहले मर रहे हैं, उनका विषय यहाँ समझना है। निकाल लो पेज नंबर 14, 24। पृथ्वी कायिक लब्धि अपर्याप्तक जीवों का कथन है। एक इंद्रियों में पृथ्वी कायिक जीव, देखो इधर क्या दिया है, एक अंतर मुहूर्त के भव, यानी एक अंतर मुहूर्त में कितना भव धारण करता है, कितनी बार जन्म लेता है। प्रत्येक में जीवों का भव, प्रत्येक में यानी पृथ्वी जल अग्नि ऐसे प्रत्येक में जीवों के भव की संख्या है ये, और कुल भव यानी टोटल भव सब मिलकर के कितने होते हैं उसको दिया है। तो पृथ्वी कायिक जीव, पृथ्वी कायिक जीव जो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है, वह दो प्रकार का है, पर्याप्तक भी होता है अपर्याप्तक भी होता है। यहाँ पर किसको ग्रहण किया है, अपर्याप्तक जीवों को ग्रहण किया है। अपर्याप्तक पृथ्वी कायिक जीव अंतर मुहूर्त के अंदर 6012 बार जन्म लेता है, अंतर मुहूर्त में 6012 बार जन्म लेता है। अब पृथ्वी कायिक बादर, बादर में भी अपर्याप्तक होते हैं कि नहीं, होते हैं। सूक्ष्म में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद है और बादर में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद है। तो बादर हो और अपर्याप्तक हो, बादर नाम कर्म का उदय है और अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जन्म ले रहा है, तो नियम से वह मरण करता है श्वास के 18 भाव में। तो अंतर मुहूर्त के अंदर उसके कितने भाव होते हैं, तो 6012, उसके भी 6012। बोलो इतनी फास्ट जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, और उतने फास्ट आयु का बंद, फिर उसका फल भोगना, निकलना, आगे का बंद करके फिर निकलना, बंदना थोड़ा जीना, निकलना, बंदना थोड़ा जीना, निकलना, ये बोलना भी इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो बोलने से पहले जन्म भी लिया और मरण भी किया, इतना फास्ट है। एक श्वास में 18 बार आता है ना छह डाला में, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुखवार। एक श्वास में 18 बार जन्म लेना मरना का मतलब कितने टाइम में, एक श्वास का मतलब एक नाड़ी का फड़कन से दूसरे नाड़ी का फड़कन, एक सेकंड का काल है वो, एक सेकंड में 18 बार जन्मा और 18 बार मरा है? एक सेकंड में तो हम बोल भी नहीं सकते 18 बार जन्म मरा जन्म मरा जन्म मरा, बोल नहीं सकते। इतना फास्ट जन्म मरण हो रहा है, बोलो देखेंगे एक सेकंड में 18 बार जन्मा 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 जन्मा, बोलो वो इतने आप बोलने से पहले कितने ही बार जन्मा और कितने ही बार मरा, वो इतना फास्ट है। बहुत सूक्ष्म है जीव सिद्धांत। अपन सोचते हैं जीवन कुछ भी ज्ञान नहीं अपने को, अपन ये सोचते हैं अपन तो मनुष्य हैं, खाएंगे पिएंगे मरण करेंगे आराम से रहेंगे बस हो गया अपना। अपन भी एक समय वहां थे जो अपर्याप्तक अवस्था में थे और इतना फास्ट ही जन्म मरण किया था, और किया है ये गारंटी है। आप कहीं भी नहीं थे तो निगोद में तो थे ही, तो वहां तो किया ही है। आप द्विंद्री नहीं बने, हो सकता है द्विंद्री नहीं बने, अनादिकाल से निगोद में रहे हों और डायरेक्ट मनुष्य गति में आए हों, लेकिन थे तो, इसमें कोई संशय है क्या, निगोद में थे क्या नहीं हम, इसमें कोई संशय है क्या, नहीं, हम निगोद में ही थे, हमारा मूल निवास कोल्हापुर नहीं, ध्यान रखना। मूल निवास हमारा निगोद है, हम यात्रा के लिए कोल्हापुर आए हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर यहाँ से जाएंगे, 2000 सागरोपम के बाद पुनः वहां जाना ही है। 2000 सागरोपम के बीच में यदि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो आपकी आत्मा मुक्त हो सकती है, चतुर गति से ही मुक्त हो जाएगी। ये पासपोर्ट किस लिए मिला है? त्रस पर्याय में घूमने के लिए और धर्म पुरुषार्थ करने के लिए ये पासपोर्ट है। और ये काम हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से 2000 सागरोपम पासपोर्ट का टाइम समाप्त होने वाला ही है और हम निगोद में जाएंगे। तो जब निगोद में जाएंगे तो उस समय जाते समय में भी यहीं रहे तो अपन कहलाएंगे कोल्हापुर रिटर्न, स्वदेश रिटर्न, परदेश रिटर्न नहीं। लेकिन ये परदेश ही है निगोद की अपेक्षा से। हमारा मूल देश निगोद। जहां अनादिकाल से रहे सबसे पहले वो हमारा, वो हमारा है। उसके बाद ये तो बाद का है। पृथ्वी का एक जीव 612 बार मरता है, जो 6012 बार, वो सूक्ष्म भी हो चाहे बादर भी हो, 6012 बार मरता है। जल कायिक उसमें भी दोनों प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर, वो नीचे ऊपर दोनों दिया है, 6012 बार। देखो ये जो एकेंद्री हैं उन सब की संख्या, भवों की संख्या एक सी है। पृथ्वी कायिक बादर सूक्ष्म, जल कायिक बादर सूक्ष्म, अग्नि कायिक बादर सूक्ष्म, वायु कायिक बादर सूक्ष्म और वनस्पति कायिक साधारण में सूक्ष्म होते हैं और बादर भी होते हैं, दोनों दिया है। सूक्ष्म और बादर दोनों की जन्म मरण अंतर मुहूर्त काल में 6012 बार। प्रत्येक वनस्पति जो कल चर्चा हुई थी, पत्ता स्कंद वगैरह, ये बादर प्रत्येक वनस्पति, ये भी अगर अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जन्मा है तो एक अंतर मुहूर्त में 612 बार जन्म ले सकता है, 6012 बार जन्म ले सकता है। तो ये टोटल एकेंद्री संबंधी जो भाव बनते हैं यहाँ टोटल दिया है, कितना? 66,132 भाव बनते हैं, 66,132। अब विकलत्रयों में देखो, विकलत्रयों में जो सम्मूर्छन है, पर्याप्तक को छोड़ो उनकी आयु बहुत होती है, अपर्याप्तक विकलत्रयों का द्विंद्री हो तो वह 80 भाव धारण कर सकता है, कितने काल में? अंतर मुहूर्त में। त्रिइंद्री जीव 60 बार 60 भाव धारण कर सकता है और चतुरिंद्री जीव 40 भाव धारण कर सकता, कितने कम होता गया? 20-20 भाव कम होते गए। चतुरिंद्री जीव ज्यादा भाव धारण नहीं करता, परंतु वहां पर आयु के संबंध में देखा था पर्याप्तकों की, द्विइंद्री जीवों की आयु तो अधिक थी, तीनिंद्री जीवों की आयु अधिक थी, चतुरिंद्री की कम थी। परंतु उस आयु से कोई मतलब नहीं अपने को, क्योंकि वो पर्याप्तक हैं, जो उनको आयु अधिक हो तो वो पर्याप्तक हैं। अपर्याप्तकों की आयु श्वास के 18वें भाग प्रमाण रहता है, तो उनका ये भवों की संख्या है। पंचेंद्री जीव लब्धि अपर्याप्तक, इसमें असंगी पंचेंद्री जीव बादर जो होते हैं और अपर्याप्तक नाम कर्म वाले होते हैं, वो 8 भव धारण कर सकते हैं। अभी बता रहे थे ना कि 8 भव, ये आ गया, 8 भव धारण कर सकते हैं। संघी पंचेंद्री जीव जो बादर होते हैं वो भी 8 भव धारण कर सकते हैं। मनुष्य पंचेंद्री जीव बादर होते हैं और बादर वाले, हाँ, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य 8 भव धारण कर सकते हैं। देखो अपने मलमूत्र में जो रहने वाले संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं, वो अपर्याप्तक नाम कर्म वाले हैं और वो लगातार उसी उसी पर्याय में वही जन्मे वही मरे, वही जन्मे वही मरे, मनुष्य ही बना बार बार, मनुष्यायु को बांधा खत्म किया, मनुष्य मनुष्य गति में ही जन्म लिया। ऐसे अंतर मुहूर्त के बाद इनके भाव कितने बनते हैं? केवल 8 ही भाव धारण कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। समय दिया 8 ही भाव, फिर इसके बाद क्या होंगे? वो इसके बाद क्या बनेंगे? तो इसके बाद वही बन सकते हैं, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में केवल 8 बार ही बनेंगे। अंतर मुहूर्त के पश्चात पुनः एक अंतर मुहूर्त में 8 ही बार बनेंगे, वही वही रह सकते हैं वो बहुत समय तक। ये
उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त,
हाँ उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त ही। हाँ वो ये कोई नियम नहीं कि बहुत समय तक वहां रहेंगे, ऐसा कोई पासपोर्ट वहां नहीं है। वहां मनुष्य कभी भी आ सकता है, यदि मान लो उस समूर्छन मनुष्य को मंदकषाय हो गए और मनुष्यायु का बंद किया और पर्याप्त तक नाम कर्म का बंद किया, तो आकर के गर्भज मनुष्य बनेंगे। समूर्छन मनुष्य गर्भज मनुष्य बन सकता है और गर्भज मनुष्य समूर्छन मनुष्य बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कदाचित विचार करो कि हम गर्भज हैं, हमारा जन्म तो गर्भ से हुआ है, ठीक है, बड़े बने हैं, मरण तो आएगा आएगा। समूर्छन मनुष्य बनने के लायक आयु को बांधा, यानी श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु को बांध लिया और मरण किया, लेकिन मनुष्य आयु का बंद पड़ा है उतना ही, मनुष्य गति में जाना है, तो क्या बनेंगे? समूर्छन मनुष्य बनेंगे। अच्छा, ये समूर्छन मनुष्य अपने ही शरीर में रहते हैं? हाँ, अपने ही शरीर में रहते हैं। अपन मर गए, गर्भज मर गए अपन, पर कौन सा कर्म का बंद किया? समूर्छन का, और मरण करके अपने ही पेट में पुनः जन्म ले लिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, खुद ही मर गए खुद के पेट में ही जन्म लिए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये शरीर गया, लेकिन मल में समूर्छन जीवों की उत्पत्ति रहती है क्या? नहीं, हाँ होती है, तो उसमें उस पर्याय में जन्म लिया, गर्भज मनुष्य बना और समूर्छन के पर्याय में जन्म लिया, कहीं दूर जाना नहीं पड़ा, वहीं का वहीं। संसार में जन्म मरण करने के लिए स्थान कम नहीं है, कहीं भी वहीं को वहीं लुढ़क जाओगे तो वहां भी जन्म, वहीं वहीं रहेंगे तो वहां मरण भी हो सकता है, जन्म भी हो सकता है। बड़ा विचित्र है यह संसार, जन्म मरण का नाम ही संसार है, इससे छुटकारा पाना निर्वाण है, मोक्ष है, वो मोक्ष है। आपको जन्म मरण होना बंद हो गया तो समझ लेना उस समय आप मोक्ष में हैं। जैसे ट्रेन में बैठ करके आते हैं तो बीच में बहुत समय तक ट्रेन जाती रहती है और दूर जाना है, तो बीच में आपको जगने की जरूरत नहीं है, इतने घंटे मुझे सोना है, गजर लगा करके सोते हैं, क्योंकि ट्रेन आगे ना बढ़ जाए। कोल्हापुर आ गया, उतरना है तो गजर घंटी बजेगी, कोल्हापुर आया ही आपको पूरी तरह से, इतने बजे ट्रेन पहुंचती ही है, गारंटी होती है ना आपको, तो आप जग जाते हैं, जगते ही आप इधर उधर देखना ही नहीं, नीचे उतरो बस, वो कोल्हापुर ही है। ऐसा यहाँ है, मरण करो, कहीं भी मरण करो, वो संसार ही है। और मरण अगर नहीं किया, मरण ही नहीं किया, तो जग जाओ, मोक्ष में आए हो। मोक्ष का मतलब ये है, तुम जहां जाग रहे हो वहां अगर आपको जन्म मरण नहीं हो रहा है तो समझ लेना आप मोक्ष में ही हैं। ये मोक्ष की दूसरी परिभाषा है। जहां जाग कर अपने आप को देखोगे और यदि आपको जन्म मरण की संभावना नहीं लगती है तो मोक्ष में आए हुए हैं, स्टेशन पर आए हैं, चिंता मत करो। ये हो गया समूर्छन जीवों का कथन। और ये सभी मिलकर के देखो वहां पर कुल कितने थे, 66,132, और विकलत्रय संबंधी कुल कितने हैं, 180, और पंचेंद्री संबंधी 24 भव बनते हैं। असंगी पंचेंद्री, सौधनी पंचेंद्री, त्रियंश, ये दोनों प्रकार के त्रियंश हैं, और मनुष्य के 8 भव। ऐसे 8 त्रिक 24 ये सभी मिलाने पर 66,336 भव बनते हैं। कुल संसारी प्राणियों के ये भव हैं, ये केंद्र से लेकर पंचेंद्री तक। अब इसमें देव और नर की नहीं आए, छूट गए क्या? बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये बता, ये ख्याल में आना चाहिए। देव और नारकियों को क्यों छोड़ दिया? त्रिंश गति आ गए, मनुष्य गति आ गया, देव और नारकियों को क्यों छोड़ा? तो उनको उपपाद जन्म होता है, वो सम्मूर्छन जन्म वाले नहीं होते, इसलिए यहाँ कथन नहीं है उसका। चलिए वापस आते हैं वहीं। सकलत्रय, सकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय के कितने भेद हैं? 2 भेद करना चाहिए, कर्म भूमिज जीव और भोग भूमिज जीव। ये त्रियंशों का चार्ट है, सकलत्रय, संगी पंचेंद्री, त्रियंश और असंगी पंचेंद्री, त्रियंश, पंचेंद्री के 2 भेद। परंतु ये 2 भेद बनेंगे, कर्मज, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। कर्म भूमिज सकलत्रय में 2 भेद हैं, संगी असंगी, और भोग भूमि में ये 2 भेद नहीं है। क्यों नहीं है? वहां संगी जीव नहीं पाए जाते, केवल वहां संगी है, इसलिए संगी एक ही भेद दर्शाया है। तो संगी असंगी और संगी जीवों में भी 2 भेद करना चाहिए, गर्भज और सम्मूर्छन। ये तो है ही, गर्भजन भी है और सम्मूर्छन जन भी है, 2 गति में, त्रिंश गति में और मनुष्य गति में, सम्मूर्छन जन भी है, गर्भजन भी है। अब गर्भजन में भी 3 भेद करना चाहिए, जलचर गर्भज, थलचर गर्भज और नवचर गर्भज। तीन भेद हो गए, जल में भी है गर्भज जीव, थल में भी है और नवचर भी है। तो सोचो जलचर गर्भज कौन होते होंगे? हाँ? कासव अंडा देता है या सीधा ही गर्भ से उत्पन्न होता है? हाँ? यदि अंडा देता है कासव तो गर्भज हो गया, सौधनी पंचेंद्री हो गया, और जल में रहता है इसलिए जलचर है, तो जलचर गर्भज ये हैं, कासव आदि पानी में रहने वाले जो अंडे रखते हैं या सीधा ही जीवों को जन्म देते हैं। ऐसे मछली गर्भज, मछली सम्मूर्छन भी है और गर्भज भी है, वातावरण में भी उत्पन्न हो सकता है और गर्भ से भी उत्पन्न हो सकता, कुछ मछली अंडे भी रख सकते हैं। हाँ, कहीं एक जगह रखते हैं वो, जहाँ हाँ किनारे पर नहीं, उसमें जल में भी रखते हुए भी वो जन्म ले सकते हैं, समुद्र के तलभाग में भी अंडे रख सकते हैं, तलभाग में भी अंडे रख दिया, किनारे पर आने की जरूरत नहीं, वहां पर तलभाग में जाएंगे और अंडे रखेंगे, बड़े हो जाएंगे वो, गर्भज कहलाएंगे। और जो सम्मूर्छन मछलियां होती हैं वो तो ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, जल में ही वातावरण के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके उत्पन्न हो गए, ये समूर्छन संगी पंचेंद्री, और इसमें पर्याप्तक भी होते हैं अपर्याप्तक भी होते हैं। समूर्छन मछली पर्याप्तक भी होते हैं अपर्याप्तक, पर्याप्तक मछली समूर्छन जो होते वातावरण से तो उत्पन्न हो गया, और उसकी आयु अधिक रहेगी, कितनी अधिक से अधिक पूर्व कोटि। राघव मत्स्य तंदुल मत्स्य ये समूर्छन भी हो सकते, पर्याप्तक भी होते हैं अपर्याप्तक भी। जलचर गर्भज, अब थलचर गर्भज कौन कौन है, बहुत सारे त्रिरंश हैं, क्या क्या हैं, जो जो मतलब गर्भ से सीधा जन्म लेते हैं वो, जो कवच सहित जन्म लेते हैं वो, और अंडे अंडे से जन्म लेते हैं वो सभी जीव गर्भज हैं, ये थलचर कहलाते हैं। जैसे नाम गाय भैंस मनुष्य घोड़ा हिरण किसी का भी नाम ले लो, ये जो चलते फिरते पशु हैं ये सब गर्भज हैं। यहां मनुष्य का कथन नहीं है, मनुष्य को नहीं लेना, मनुष्य जरूर थलचर है पर मनुष्यों में थलचर भेद नहीं किया, ये त्रिरंशों के भेद, जलचर थलचर नवचर। नवचर में क्या लेंगे, पक्षी जो अंडे रखते हैं वो सभी गर्भज हैं। इसमें समूर्छन भी हैं, समूर्छन पक्षी होते कि नहीं होते, होना ही चाहिए, क्योंकि उनके मलमूत्र में, उनके मलमूत्र में भी उसी जाति के जीव उत्पन्न होते हैं, और इसलिए दो भेद बताया, गर्भज और समूर्छन। समूर्छन तीन प्रकार के हैं, वो भी जलचर थलचर और नवचर, ये भी तीन प्रकार के, गर्भज भी तीन प्रकार के, समूर्छन भी तीन प्रकार के। तो ये समूर्छन कहाँ रहते होंगे, ये एक्स्ट्रा है क्या, नहीं, अपर्याप्तक समूर्छन उनके मलमूत्र में पैदा होते ही हैं, किंतु वो गर्भज नहीं कहलाते, इसलिए भेद अलग से बना दिया, इस तरफ रख दिया ये गर्भज ये समूर्छन ये। प्रश्न उठाओ, जलचर थलचर नवचर हैं, और समूर्छन समूर्छन थलचर त्रिरंश कौन, वो भी हैं और एक्स्ट्रा भी होते हैं क्या, जलचर को ले लो, जलचर को ले लो, समूर्छन जलचर कौन है ये, समूर्छन पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों होते हैं क्या, नहीं होते हैं, देखो तीन भेद हैं उसके, पर्याप्तक तीन भेद है क्या, नहीं क्या, दो भेद हैं, हाँ देखो समूर्छन में तीन भेद हैं, पर्याप्तक भी हैं, निर्वृत्ति अपर्याप्तक भी हैं, लब्धि अपर्याप्तक भी हैं। बोलो पर्याप्तक समूर्छन त्रिरंच, पर्याप्तक समूर्छन त्रिरंच के कितने भेद हो गए, तीन, पर्याप्तक के एक ही भेद है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक उसका भी भेद है वो, ठीक है, लब्धि अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक त्रिरंश कहाँ रहेंगे, समूर्छन जलचर, सोचो बिल्कुल, जो समूर्छन त्रिरंश पर्याप्तक त्रिरंश है राघव मत से, उसका क्या मलमूत्र नहीं है, तो उसके मलमूत्र में रहने वाले अपर्याप्तक, वो भी अपर्याप्तक रहते हैं, और वो पर्याप्तक हैं, समूर्छन जरूर हैं लेकिन वो पर्याप्तक हैं, उनके मलमूत्र में अपर्याप्तक हैं। ऐसे ही ये गर्भज जो त्रिरंच होते हैं, कासव है, कासव जाति पर्याप्तक ही है और गर्भज ही है, ऐसा नियम है क्या? बिल्कुल होना ही चाहिए, उसके बिना तो बनेगा ही नहीं। अपने मलमूत्र में जब होते हैं तो त्रिरंचों के मलमूत्र में क्यों नहीं होते ही हैं? तो कासव है, अंडा देता है, ये गर्भ जन्म हुआ। जो अंडे से जन्म ले रहा है उसकी आयु तो नियम से अधिक होती ही है। वो जो अंडा आया और फूट करके कासव निकला, वो पर्याप्तक है क्या अपर्याप्तक? वो तो पर्याप्तक है, परंतु वो जो कासव जिसने अंडा दे दिया उसका मलमूत्र है क्या? नहीं। उसमें लब्धि अपर्याप्तक संगी पंचेंद्री कासव जाति का समूर्छन जीव रहते ही हैं। इसलिए ये तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। परंतु गर्भज में दो ही भेद दिया है, देखो, पर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक, दो भेद क्यों? जो गर्भज हैं वो समूर्छन नहीं, इसलिए दो भेद हैं। जो जो गर्भज हैं वो पर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक, दो ही प्रकार के होते हैं। पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से आया, पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाया, पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्तक कहलाया। तो ये दो ही भेद हैं, गर्भज के भेद बना रहे हैं इसलिए दो भेद बनते हैं। परंतु इनके मलमूत्र में जो जन्म लेते हैं वो गर्भज नहीं रहते, इसलिए तीन भेद नहीं बताया। हाँ, वो गर्भ से नहीं आते इसलिए तीन भेद नहीं बताया। उनको किधर रखेंगे फिर? हाँ, समूर्छन में डालेंगे। जो जलचर थलचर नवचर हैं उनके मलमूत्र में जैसे रहते हैं वैसे उनके मलमूत्र में भी रहते हैं। मनुष्य के मलमूत्र में हैं तो इनके मलमूत्र में क्यों नहीं? अब ये सोचो, मनुष्य पर्याप्तक भी है अपर्याप्तक भी है। पर्याप्तक कौन है? ये गर्भज है, गर्भज है। जो गर्भज मनुष्यों के भेद वो करेंगे, उनके भेद करेंगे, तो ये तो थलचर मनुष्य है। जलचर में तो मनुष्य होता नहीं और नवचर भी नहीं होता, थलचर है, तो थलचर मनुष्य। पर्याप्तक यानी गर्भज, इनके मलमूत्र में जीव होने के कारण से क्या गर्भज मनुष्यों का एक दूसरा भेद भी जोड़ेंगे? पर्याप्तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, इसी में जोड़ेंगे क्या? इसमें नहीं जुड़ेगा। वो समूर्छन का कॉलम ही अलग है, गर्भज मनुष्य समूर्छन मनुष्य। समूर्छन मनुष्य भी होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकार के नहीं होते। हाँ, समूर्छन मनुष्य पर्याप्तक नहीं होते, त्रिरंच तो होते हैं। देखो, त्रिरंचों में रागो मत से समूर्छन है क्या? नहीं, लेकिन वो पर्याप्तक है। ऐसे समूर्छन मनुष्यों में पर्याप्तक समूर्छन मनुष्यों को दिखाओ, कौन है? है ही नहीं। और वो पर्याप्तक बन जाएंगे तो उठ के फिरने लग जाएंगे वो भी। खाली त्रिरंच में ही पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद। नहीं, कोई भी हो, मछली हो, कासव, कोई भी हो, पर्याप्तक है क्या? नहीं, पर्याप्तक है। पर्याप्तक है तो उसके उसके मलमूत्र में जो समूर्छन है वो लब्धि अपर्याप्तक है, वो बड़े नहीं होते। वातावरण के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर उत्पन्न होना, ये समूर्छन जन्म है, मनुष्यों को भी है और त्रिरंचों को भी है। त्रिरंच वातावरण के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर शरीर रचना कर बड़ा भी होता है, ऐसा समूर्छन मनुष्य कोई है? वातावरण के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया, बड़ा हुआ और सबको दिख रहा है? नहीं है। अगर होते तो यहाँ पर वर्णन आता, और वर्णन आने से पहले यहाँ दिखते भी। तो टाइम हो गया
जब समूचा जीव जितनी भी उनकी आयु है
हाँ।
में वो अपनी आयु को भुगतते भुगतते 8-10 बाद तो वो पाप जो कुछ करेंगे नहीं
हाँ।
तो फिर उनकी गति अच्छी होगी बाद में।
नहीं, ये बताया है ना, ये बताया है उतना पाप नहीं होता इसलिए नरक भी नहीं जाते और स्वर्ग भी नहीं जाते। समूर्छन मनुष्य, समूर्छन मनुष्य न स्वर्ग जाते हैं न नरक जाते हैं, दो ही गति में जाते हैं, ये भी बताया है। वो चार्ट आने वाला है, अभी तो हम भेद पढ़ रहे हैं। ये समूर्छन मनुष्य कितनी जगह जा सकता है, नहीं जा सकता, ये सब आएगा। वहां चर्चा करने में बहुत मजा आएगा।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।